SBS हिंदी पर मैं हूँ आपके साथ अनीता बराल। आइए आज आपकी मुलाकात करवा रही हूँ भारत से आए जाने माने कवि लेखक वेद व्यथित जी के साथ। वेद जी की कई पुस्तकें प्रकाशित हुए हैं और उनके काम पर कई छात्रों द्वारा रिसर्च कर PhD प्राप्त की गई है। साहित्य समाज का दर्पण होता है। अभी हाल ही में वेद जी की रचनाएं हैं न्याय याचना, जो महाभारत के एक प्रसंग पर आधारित है, और ऋषि गालव द्वारा न्याय की मांग है, और दूसरा है अहिल्या काव्य खंड। तो इन दोनों ही कथाओं पर काम करने का क्या उद्देश्य रहा, इस पर वेद जी ने बताया।
हमारे जो साहित्यिक संदर्भ हैं, हमारे जो ऐतिहासिक जो कथाएं हैं, उन कथाओं को उस समय किस तरह से लिखा गया वो अलग एक प्रश्न है। उस समय का समाज, उस समय की परिस्थितियां, उस समय की राजनीतिक परिस्थितियां, भौगोलिक परिस्थितियां, वो अलग रही होंगी। परंतु वर्तमान में हम जिस चीज को देख रहे हैं, भोग रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, हम उस संदर्भ में उस कथा को यदि ढाल पाएं, यदि उस कथा को हम आज के समाज के लिए कुछ उपयोगी बना पाएं, उससे समाज को हम कुछ दे पाएं, तो ये हमारे लेखन का मूल तत्व होना चाहिए। और न्याय याचना में ऋषि को न्याय चाहिए, वो न्याय के लिए याचना करता है कि मुझे न्याय चाहिए, परंतु अन्य जो लोग हैं, जो उस समय व्यवस्था में हैं, न्याय की व्यवस्था में, वो इधर उधर बात करके, जैसे कानूनी दाव पेश लगाकर और उसको क्षमा याचना दिलवाना चाहते हैं जिसने अनुचित काम किया है, जिसको दंड मिलना चाहिए। यदि हम उस तरह से छोड़ देंगे खाली पश्चाताप से, क्योंकि पश्चाताप वो दंड की वजह से कर रहा है, उसको पश्चाताप बाद में हुआ है, क्योंकि पहले वो स्वच्छंद रूप से वो अपराध करता है, फिर वो पश्चाताप क्षमा मांगता है, दोनों अनुचित है, उसको दंड मिलना चाहिए, ऋषि का ये आग्रह है, समाज का ये आग्रह, पश्चाताप कर रहा है, चलो छोड़ो, आप क्षमा कर दो, आप क्षमाशील हो आखिर में, परंतु ऋषि कहते हैं क्षमा नहीं, दंड तो इसको मिलना चाहिए, और समाज के लिए नियम बनाना आवश्यक है और दंड भी आवश्यक है।
जी, और दूसरे खंड काव्य जो अहिल्या है।
जी जी, ये असल में भारतीय जो साहित्य है या जो हमारा पौराणिक साहित्य है, उसमें अलग अलग समय अनुसार उन कथाओं की व्याख्या होती गई है। जो मूल कथा है राम की मूल कथा, वो वाल्मीकि रामायण है, और जो संत तुलसीदास जी ने लिखी है रामचरितमानस, बहुत बाद में, यानी 500-600 साल पूर्व लिखी गई, परंतु रामायण जो है वाल्मीकि की लिखी हुई, बहुत आदि काल में लिखी गई है, उसके संदर्भ अलग हैं। वहां अहिल्या का जो जिक्र आता है, अहिल्या विश्व की सबसे सुंदर स्त्री है। ब्रह्मा जी ने ऋषि के यहाँ जब वो वहां से गुजरे, तो उन्होंने उस स्त्री को वहां उनके आश्रम में छोड़ गए, तो ऋषि ने उनकी तरफ देखा भी नहीं, क्योंकि वो तपस्या में लीन है।
जी, तो अहिल्या के जीवन में इंद्र का प्रवेश होता है।
प्रवेश होता है, और अहिल्या उसमें सहमति व्यक्त करती है इंद्र के साथ कि देवताओं का राजा मेरे पास आ रहा है, परंतु दूसरी कथा में ऐसा नहीं है।
वो इंद्र द्वारा छली गई, इसके बावजूद वो एक दंड का पात्र बनती है। अब आज के संदर्भ में अगर हम पत्थर को सोचें तो पश्चाताप में चली गई या
डिप्रेशन,
उसको डिप्रेशन में, अवसाद में
चली गई। हमारे यहाँ एक समय ऐसा था जब परिवार की कल्पना नहीं की गई थी, रिश्ते नाते नहीं थे, स्वच्छंद वातावरण था, परिवार संस्था बहुत बाद में आई है। जब भी जिस भी समय आप देखें, परिवार जीवन आते ही हमारे पास बहुत सारे हम अपने ऊपर नियम लागू कर लेते हैं कि भी परिवार ज्यादा महत्वपूर्ण है बजाय स्वच्छंद जीवन जीने के, क्योंकि अहिल्या उस वाल्मीकि रामायण के अनुसार चाहती है कि राजा इंद्र है और मेरे पास आया है, और ये ऋषि तो 24 घंटे तपस्या में लगे रहते हैं, यही मेरा जीवन है का। तो ये विचारधाराओं का संघर्ष कथा में है, और इन विचारधाराओं के संघर्ष का कहीं सामंजस्य हमारे कथाओं में दिया है। और आधुनिक संदर्भ में भी मैं इस संदर्भ को परिवार जीवन और दाम्पत्य जीवन, इन दोनों के संदर्भ में मैं सामंजस्य बिठाकर मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि अहिल्या एक वो स्त्री है जो दोनों चीजों का प्रतिनिधित्व करती है, दाम्पत्य जीवन का भी और परिवार जीवन, पारिवारिक मूल्यों का भी। तो वहां परिवार, उसके अनुसार परिवार मूल्य जो है वहां समाप्त हुए हैं, और दाम्पत्य जीवन को प्रश्रय दिया है पहले, फिर बाद में उसको गिलानी हुई है परिवार और समाज, तत्कालीन समाज के हिसाब से, तो उस समय गिलानी में चली जाती है और पत्थर जैसी हो जाती है। फिर भगवान राम उसको आके उसको सांत्वना देते हैं कि देखो अपराध किसी से भी हो सकता है, तब वह उस अवसाद से बाहर आती है और अपना जीवन सामान्य जीवन।
जी, तो यहाँ पर आपका एक काव्य था न्याय याचना
जी,
और दूसरा अहिल्या
जी,
खंड काव्य
जी।
एक तरफ अपराध हुआ है
जी, जी।
और क्षमा की चाहना है, वो न्याय की चाहना है
जी।
और यहाँ पर कहीं न्याय के साथ में टकराव है
टकराव।
कि नहीं? ये आपकी रचनाएं एक दूसरे के साथ में ही टकराव में चलती हैं।
मैं पाठक के ऊपर छोड़ता हूँ
जी, जी जी, लेकिन उस टकराव से
वो समाज कुछ उससे प्रेरणा ले, वो प्रेरित करे समाज को। आपने कहा समाज साहित्य समाज का दर्पण है, परंतु इससे आगे बढ़कर एक बात और है कि साहित्य समाज का दीपक भी है, वह समाज को दिशा भी दिखाता है
और दिशा दिखाने के लिए
जी
पानी की तरह बहना भी
बहना
होता
आवश्यक है।
आसपास की चीजों को अपने आप में समेट के गतिशील रहना होता है और वहीं आती है बात
जी
अगले काव्य के ऊपर जो है जल।
जल जी,
जल को किस परिभाषा में बांधे हम?
हिंदी के बहुत महान साहित्यकार जयशंकर प्रसाद जी ने, जिसकी आप भी बहुत प्रशंसक हैं और बहुत बड़ी पाठक हैं, उन्होंने एक आंसू पर एक खंड काव्य लिखा है, केवल आंसू पर,
केवल आंसू,
और वो द्रवित करता है व्यक्ति को, पाठक को। उसी तरह मैंने जल को लिया है। जल एक साधन, जल को हम यदि सोचें केवल पानी, पानी नहीं है वो, आचमन के लिए पवित्र है, विशालता के लिए समुद्र है, लघुता के लिए एक नन्हा कण है, बूंद है, ओस है, और कभी बर्फ है, कभी इज्जत है, कभी आबरू है, कभी लज्जा है, कभी शर्म है, कभी जीवन है। जल के कितने संदर्भ होते हैं, जल के बिना हमारा जीवन अधूरा है। जल जहां बहुत लघु है वहां बहुत शक्तिशाली है, और सुनामी आ जाए तो क्या कुछ नहीं कर सकती, और वही जल जब बूंद बूंद करके रिमझिम बारिश में जब बरसता है तो कितना हृदय को आह्लादित करता है, प्रफुल्लित करता है, प्रकृति को सुंदर बना देता है। जल हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण तत्व है, पांच तत्वों में जल भी एक तत्व है, तो उसके बिना तो हमारा, हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। जल से बिजली बनती है, जल से उद्योग चलते हैं, और जल के संदर्भ में मैंने लोकोक्तियां, मुहावरे कितने सारे हैं, उनका भी इस काव्य में उपयोग किया है।
अच्छा,
बहुत सारी चीजों
तो
का उपयोग हुआ है।
क्यों ना आप हमें कुछ सुनाते भी चलें साथ
जी,
साथ।
जी जी
जी,
देखिए, धरती तो अबला है कितनी, पर कितना अधिकार, पर अधिकार जमाता पानी, जितना करे कठोर हृदय को उतना तरल बनाता पानी। पानी जब धरती की ओर चलता है तो उसको तरल बनाता जाता है, शुष्क धरती को तरल कर देता है। बादल बन अमृत बरसाता, नेह की बूंद लुटाता पानी, यदि रहे मर्यादा इसकी तब तो जीवनदायक पानी। और यदि जीव और देखिए उसके अलग अलग संदर्भ में, आप अलग अलग जब समय पर जल को कहेंगे तो अलग संदर्भ आएंगे। आंखों के आंसू का पानी कहता अपनी दर्द कहानी, कितना दुखी हृदय होता है जब आता आंखों में पानी। एक कबीर का दोहा है कि जल में कुम में जल है, मतलब उन्होंने आध्यात्म दिया है आत्मा के लिए, सब आत्मा एक ही जैसी है। मैंने भी उसको लिखने का प्रयत्न किया है, मेरा पानी तेरा पानी, हम जो मेरा तेरा करते हैं ना, मेरा पानी तेरा पानी, सभी एक रस हो ये पानी, जल में कुम में जल है, फूटे जल सब पानी पानी। यदि हमारा कुम फूटता है तो पानी पानी में समान रूप से आ जाता है, उसमें कोई अलग संदर्भ नहीं रहता। और अब कल्पना कीजिए जब सर्दी होती है दिसंबर में भारत में, सर्द रात्रि के अंध तमस में जब खेतों में लगता पानी, बर्फीला पानी वह कहता उस किसान की राम कहानी, उसका सपना है बस पानी, हर किसान की यही कहानी, पानी पर निर्भर है उसकी जीवन भर की करुण कहानी, कई बार तो खड़ी फसल ही खूब नष्ट कर देता पानी, सारे सपने धो धो देता बिन मौसम जब बरसे पानी, बिन मौसम जब बरसे पानी।
इस पूरे काव्य को आप किस पंथ, किस जॉनरा में रखना चाहेंगे?
असल में ना, हम साहित्य में किसी भी वस्तु को मानवीय संदर्भ में अवश्य रख, मानवीयता से उसका क्या संबंध है, मानवीय जीवन में वो किस तरह उपयोगी है। तो जल देखिए हमारे यहाँ सामाजिक और हमारे जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में या हमारे जीवन जीने के लिए वो तो है ही, परंतु हमारे जो दूसरे भावात्मक पहलू हैं उनमें जल का बड़ा महत्व, क्योंकि आंख का पानी जब कहेंगे तो वो पानी वही है, परंतु उस पानी का अलग अलग जगह अलग अलग संदर्भ आ जाता है। कहीं तो नेह की बूंद बनकर पानी बरसता है, कहीं आंखों से पानी ढकता है, और देखिए कभी कभी हंसते हंसते भी पानी आ जाता है आंखों में, लोटपोट हो जाता है आदमी। जी, हमारे जीवन में बहुत सारे संदर्भ में कि हम सबको व्यक्त नहीं कर सकते। और देखो दूध के साथ पानी का कितना बढ़िया सुंदर संदर्भ है, कितना के पानी तो बेशक है पानी, मित्र भाव पहचाने पानी, यानी जो मनुष्य जीवन की मित्रता का भाव है उसको मैंने पानी के सहारे व्यक्त करने का प्रयत्न किया है। करे दोस्ती यदि दूध से, कण कण खुद जल जाता पानी। वो दोस्त दो अपने दोस्त यानी मित्र के लिए, दूध के लिए एक एक कण खुद जलता है अपने आप को, और वह दोस्त के अपने उसके क्रोध को भी शांत करता है। यदि तपिश जब लगे दूध को, उसकी तपिश बुझाता पानी, कितना भी उपान आ जाए उसको शांत कराता पानी। दो छींटे हम दूध में उबाल में मार देते हैं पानी के, तो दूध शांत हो जाता है। हमारे जीवन में ऐसा मित्र होना चाहिए पानी जैसा, कि जो हमारे उबाल को एकदम शांत करते और हमारी बहुत सी विध्वंस होने से बच जाए, हमारा बहुत सा हानि होने से बच जाए। तो ये पानी ही नहीं है, हमने इस पानी में के माध्यम से मानवीय जीवन के बहुत सारे पहलुओं को व्यक्त किया है। और जब जब तपता दग्ध हृदय दग्ध हो, आंखों में आ जाता पानी।
पानी का जो भावात्मक पहलू है, उसको भी एक मार्ग चाहिए बहने के लिए।
जी,
वो व्यक्त होता है एक तो आंखों के माध्यम से, और दूसरा व्यक्त होता है शब्दों के माध्यम से। और उन शब्दों का प्रयोग करके आपने उसी पानी के महत्व और उसके अलग अलग पहलुओं के ऊपर ध्यान दिलाया है अपने इस काव्य जल में।
और देखिए कितना तो, महत्वपूर्ण है कि जो परहिताय हमारा जो ध्येय वाक्य होना चाहिए कि भाई हम दूसरों का हित कर सकें, अपना हित तो हो ही रहा है, हमें दूसरों का भी हित करना है। पानी उसमें कैसे मतलब सम्मिलित, पीड़ा इसकी अनजानी कब, पीड़ा इसकी है पहचानी, पर पीड़ा भी खूब समझता उस पर ही मर मिटता पानी। जिसकी मतलब पीड़ा को समझता है तो उसके लिए उसके आंख में पानी आ जाता है। निष्ठुर भी है सरल बहुत है, निष्ठुर भी है सरल बहुत है, दिल से मिलता सबसे पानी, पर जब प्रेसी दगा करे तो तुरंत छोड़ उड़ जाता पानी। वो जमीन जब तपती है वह तो पानी सूख के उड़ जाता है और वो उसको ऐसे ही छोड़ जाता है। धरती के पृथ्वी के संदर्भ में भी बहुत सारी बातें मैंने कही है, परंतु हम सवारी सबकी जिम्मेदारी ये है कि हम पानी को कैसे बचा के रखें। आज की समस्या ये है क्योंकि पानी बहुत कम है, पीने योग्य पानी संभवतः 6% है पृथ्वी पर। और जी उस पानी को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों को पानी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि संभवतः अगला युद्ध पानी पर हो, तो इन परिस्थितियों को देखते हुए पानी तो अमृत होता है, मानव गंदा करता पानी, यदि शुद्धता बनी रहे तो जीवनदायक है ये पानी। क्योंकि पानी की महिमा न्यारी है, पानी है आवश्यक सबको, पानी है, पानी न है केवल पानी, पानी जीवन, जीवन पानी। और तभी पीढ़ियां पूजनीय हैं, महत्वपूर्ण हैं, हम भी जिम्मेदारी जाने, एक एक कण इस पानी का सदा बचाएं, सदा संवारें, तभी पीढ़ियां ले पाएंगी जीवन का आनंद अनोखा, बिना पानी सब नष्ट होएगा, इसीलिए पूजें हम पानी, इसीलिए पूजें हम पानी।
पानी की आवश्यकता, पानी का अध्यात्म, पानी के लिए भावात्मक पहलू और पानी का सामाजिक पहलू, ये सब आपने समेटा है अपने इस काव्य में। और देखिए पानी की तरह ही समय भी बहता चला गया जब हम आपस में बात कर रहे थे। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात कर आपकी रचनाओं के बारे में जानकर। बहुत बहुत आपका धन्यवाद करना चाहूंगी वेद जी की, आपने ये समय निकाला, आप यहाँ पर स्टूडियो में आए,
आपने मुझे अवसर दिया। मैं श्रोताओं का भी धन्यवाद करता हूँ, उनको नमस्कार करता हूँ और बहुत बहुत आभार आपका हृदय से।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।